Jaya Radha Madhava Vanja Bihari Jaya Radha Madhava Vanja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Yashodananda Dambara Jana Ranjana Yashodananda Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Yamuna Tira Vana Chari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की सत्रा श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवत स्कंद दो अध्याय नौ अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर श्लोक संख्या आठ दिव्यं सहस्राब्धमोघ दर्शनो जीता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिल लोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः दिव्यं सहस्राब्धमोघ दर्शनो जीता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिल लोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः दिव्यं सहस्राब्धमोघ दर्शनो जीता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिल लोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः दिव्यं सहस्राब्धमोघ दर्शनो
जेता निलात्मा विजितो भयंद्रियः अतप्यतास्मा किल लोकतापनम् तपस्तपीयांस्तपता समाहिता शब्द दिव्यां स्वर्ग के देवताओं का सहस्र एक हजार अब्दाम वर्ष अमोघ निर्मल निष्कलं दर्शन ऐसी जीवन दृष्टि वाला जीता नियंत्रित अनिल प्राण आत्मा मन विजेता वशीकृत उभया दोनों इंद्रियः इंद्रियों वाला अतप्यतः तपस्या की स्मा भूतकाल में अखिला समस्त लोक ग्रह तापनं प्रकाशनार्थ तपः तपस्या तपियान अत्यंत कठिन तप तपतां समस्त तपस्वियों का समाहितः इस प्रकार स्थित अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार से है, देवताओं की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से ये दिव्य अनुगुंज सुनी और इसे दैवी मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सार्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितामशाम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। इसको तात्पर्य में पढ़ता हूं। ब्रह्मा जी ने रहस्यमय तप की ध्वनि सुनी किंतु वे ये नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्चारित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और वे 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें भगवान विषय विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने भगवान तथा भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। भले ही भगवान स्वयं उपस्थित ना हो किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे दैवी आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए और ब्रह्मा जो हरेक के आदि गुरु हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता है अतः श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता या संसार के किसी अन्य शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि वाणी नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करने करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना होता है। सफलता का रहस्य यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि प्राप्त की जाए। संसारिक कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त तथाकथित दिव्य ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। ऐसे दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए जिससे अपने विवेक से या कि भाग्य से गुरु द्वारा ये दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके। समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, किंतु शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने प्रामाणिक गुरु साक्षात भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने और प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन ही सफलता का रहस्य है। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों प्रकार के इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग भगवान के आदेश पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से शिष्य परंपरा में अवतरित होता है, अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश के पालन का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रित करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान बन सके कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो प्रभुपाद का तात्पर्य अपने आप में परिपूर्ण है। ब्रह्मा जी को जो स्थिति है उसका वर्णन करने के लिए, तो इस अध्याय में हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी पूर्ववर्ती अध्याय आठवें अध्याय में जो परीक्षित के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर दे रहे हैं। और शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो जगत है उसकी सृष्टि किस प्रकार से हो रही है। सर्वप्रथम जो जीव इस जगत में प्रकट होता है, गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, तो उस कमल में ब्रह्मा का जन्म होता है और ब्रह्मा उस कमल के ऊपर जन्म लेते हैं तो वो इधर उधर देखने लगते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से प्रकट हुआ हूं, मेरा मूल स्रोत क्या है। हम बिल्कुल एक प्रकार से भ्रमित हो गए थे और वो ढूंढने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी ब्रह्मा उस कमल के डंडल से नीचे चले जाते थे, लंबा नीचे। आप सोचो 14 भुवन 14 प्लैनेट्स उसमें है, एक एक प्लैनेट हमारे लिए अचिंत्य है वैज्ञानिकों के लिए। तो ब्रह्मा पूरे नीचे जाते हैं उस डंडल से, फिर भी भगवान अनंत है, तो अनंत का अंत संभव नहीं है। तो ऐसे ब्रह्मा प्रयास कर रहे थे, नीचे जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो सोचने लगे कि अभी कब तक नीचे जाते रहूं। तो उन्होंने सोचा वापस आ गए ऊपर, फिर से कमल के ऊपर, और जैसे ऊपर आए तो सोचने लगे, तब उनको ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो कृष्ण उसका मीनिंग भी रिवील करते हैं। तो उन्होंने गंभीरता से सुना, क्या था, त और प, ये दो जो क्या कहेंगे अल्फाबेट अक्षर है, अक्षरों को सुना और वो समझ गए क्या करना है मुझे, अभी तपस्या करनी है। मतलब अभी हम इतने बड़े बड़े प्रवचन लंबे लंबे सुनते हैं तभी भी हमें क्या करना है वो समझ में नहीं आता। बहुजन में करी यदि श्रवण कीर्तन, तब तरह पाए कृष्ण पदे पे मदन। अभी बहुत जन्म जन्म तक हम लगे पड़े हैं, कब तक कितने प्रवचन सुन लिए, कितने ग्रंथ पढ़े, लेकिन फिर भी हम क्या है, संशय आत्मा विनश्यति, डाउट संशय आदि से भरे पड़े हैं, और हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि मुझे करना क्या है। बल्कि भगवत भक्ति बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए सरल हृदय की आवश्यकता चाहिए। तो भगवत भक्ति, भगवान का भजन करना, भगवान को प्रसन्न करना, इतना सरल है। प्रभुपाद कहते थे ये जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में जो लोग हमारे संग में रहते हैं, चाहे हमारी पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, बॉस हो, या कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबकी सेवा इतनी करते रहते हम दिन रात, फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं होते। प्रभुपाद ने कहा जितना प्रयास आप भौतिक लोगों को संतुष्ट करने में लगे हो, उसका कुछ प्रतिशत प्रयास यदि सिंसियरली गंभीरता से कृष्ण को प्रसन्न करने में लगाओगे, तो कृष्ण को आप तुरंत ही अपना बना सकते हो। भगवान बहुत सुलभ है, यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ। भगवान कहते जो निरंतर मेरा स्मरण करता है हे पार्थ, उसके लिए मैं क्या हूं, बहुत ही सुलभ हूं, दुर्लभ नहीं हूं। तो इसलिए भगवान बहुत सुलभ वस्तु है। भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को अपना करना भगवत भक्ति योग के माध्यम से बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए हमें अपने हृदय को सरल बनाना होगा, अपनी इच्छाओं को सरल रखना होगा, अपने जीवन को सरल करना होगा, तभी वास्तव में कृष्ण प्राप्ति है जहां है ते, तभी कृष्ण की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो ब्रह्मा बहुत सरल हृदय के प्राणी है, जीव है, इतने बड़े कमल आसन, हम छोटे से आसन में बैठते तो इतना अहंकार हो जाता है, वो कमल आसन, कमल आसन नाचे, गाते ना नारद मुनि, कमल आसन एक ब्रह्मा का दूसरा नाम है, वो नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे। तो ऐसे ब्रह्मा भी सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और निमग्न रहते हैं कृष्ण के स्मरण में। जब पहली बार उनका जन्म हुआ, अभी ऐसा वर्णन तो नहीं आया कि वो, वैसे ब्रह्मा स्पेशल जीव है, भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। इस भौतिक जगत में हमें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, हम माता पिता निर्भर रहते हैं अपने बच्चों पर, बच्चे अपने माता पिता पर, तो इस प्रकार से सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। लेकिन भगवान किसी पर निर्भर नहीं है, पूर्ण है, आत्मा नाम है, आप्त काम है। तो ऐसे भगवान अपने कमल नाम, उनको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। तो भगवान के नाभि कमल से, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं सकल इंद्रिय वृत्ति मंती ही, उनकी कोई भी इंद्रिया किसी भी और इंद्रिय का काम करता है। हम मुंह से ही खा सकते हैं, आंखों से खा नहीं सकते। भगवान आंखों से खा सकते हैं और मुंह से देख सकते हैं। तो भगवान अपने किसी भी इंद्रिय के द्वारा किसी दूसरे इंद्रिय का कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि वो क्या है, पूर्ण। भगवान पूर्ण है, पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णांश पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो ऐसे परम भगवान कृष्ण जो पूर्ण है, जिनकी इंद्रियां किसी भी दूसरे इंद्रिय का कार्य करने की योग्यता रखती हैं। तो जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्मा बहुत छोटे बालक थे, ऐसा है ब्रह्मा छोटे बालक थे क्या जब जन्म लिया? नहीं, जैसे स्वर्ग में जो जो जन्म लेते तो वहां बुढ़ापा नहीं है और बचपन नहीं है, वहां तो यंग, जन्म लेना मीन्स क्या, यंग अवस्था, युवा अवस्था। तो ब्रह्मा ने जन्म लिया, अभी आप ब्रह्मा का नाम सोचते समझते कि उसकी लंबी दाढ़ी होगी, वो भी सफेद देव हो गई होगी, लेकिन नहीं, ब्रह्मा बहुत सुंदर है। और ब्रह्मा की अभी 50 साल पूरी हो गई है इस कलियुगा में, अभी 51 उनका शुरू हो गया है। तो ऐसे ब्रह्मा क्या करते हैं, अपने 50 साल की शुरुआत की आयु में रंगनाथ की पूजा करते हैं, और अभी बचे हुए 50 साल में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की पूजा करते रहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा का जन्म हुआ, जन्म होते वो रो नहीं रहे थे, जिज्ञासा उनके अंदर ये जिज्ञासा गई। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्मा पहला पैदा हुआ है वो भी यही जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से जन्म लिया हूं, मेरे दुखों का मूल कारण क्या है, मैं हमेशा सुख शांति अनुभव करना चाहता हूं, मैं अलग अलग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूं, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन ये सब हो रहा है क्यों? तो जब तक व्यक्ति इन प्रश्नों को अपने हृदय में उजागर नहीं करता और इनके उत्तर आंसर्स को ढूंढता नहीं है, तब तक उस व्यक्ति को कंजूस कहा गया है। क्या कहा गया है? कंजूस। यही अंतर है एक कंजूस व्यक्ति में और एक ब्राह्मण में। ब्राह्मण क्या है कि जिसके पास ये मनुष्य का देह मिला है वो इसकी परिपूर्णता की ओर अग्रसर होता है, इसके उद्देश्य को जानता है और उसकी पूर्तता करता है। लेकिन जो कंजूस है, इतना मूल्यवान मनुष्य देह मिलने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं करता है, इस्तेमाल करता है तो पशु के समान, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एता पशु भी नराणा। तो लेकिन ब्रह्मा बहुत सोचने लगे, और दो शब्द काफी, जैसे प्रभुपाद ने बोला ना, कोई व्यक्ति मेरे ग्रंथों के संपर्क में आ जाए शुद्ध हो जाएगा, एक चैप्टर पढ़ ले कृष्णा बुक का क्या होगा, शुद्ध भगवत धाम जाएगा, एक चैप्टर ही नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ ले, एक लाइन पढ़ ले, एक लाइन ही नहीं एक वाक्य शब्द पढ़े तो भी वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो वह उसका मतलब है कि फेथ की आवश्यकता है, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द कहले सदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा की परिपूर्णता क्या है, श्रद्धा की सर्वश्रेष्ठता क्या है, या श्रद्धा का परफेक्शन क्या है कि मैं अपने लाइफ में कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, ये कन्विक्शन, ये हमारे अंदर कन्विक्शन आना चाहिए, इसी को कहते हैं श्रद्धा विश्वास है फेथ। और ये जब तक नहीं है तब तक हमारा भगवत भजन क्या रहेगा, डामाडोल, हम गंभीर नहीं होंगे। तो इस प्रकार का फेथ, इस प्रकार का कन्विक्शन हमें डेवलप करना होगा। तो भगवत गीता के हम एक शब्द को भी समझ में आ जाए, सर्वधर्मात् परित्यज, बस ये आधी लाइन समझ में आ जाए और उसके ऊपर हम काम करना शुरू करें तो परफेक्शन है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी ने सुना तप और उसके बाद खत्म हो गया, नहीं, ब्रह्मा ने क्या किया, तुरंत उसका पालन करना शुरू किया। जैसे शास्त्र कहते कि श्रवणम हमारा पूर्ण कब होता है, जब हम श्रवण करते हैं, और श्रवण करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका मनन करते हैं, और तीसरा क्या है, उसके अनुसार कार्य करते हैं। और वास्तव में इसलिए श्रवणम बहुत पावरफुल है, हम ग्रंथ पढ़ते तो 25% ही हमें समझ में आता है, लेकिन वही सब्जेक्ट मैटर, वही विषय आप जाकर सुनते हो तो 50% आपको समझ में आने लगता है, और जो आपने सुना है उसको जाकर आप जीवन में लागू करते तो जब आप जाते हो और क्या क्या मैंने सुना है उसको समझने का प्रयास करते हो, रिविजन करते हो, ठीक से फिर से मनन या चिंतन करते हो तो 75%, और जाकर फिर उसका हम अपने जीवन में उसको लागू करते हैं तो जो श्रवण है वो 100% पूरा हो जाता है, वो परफेक्शन है। इसलिए ब्रह्मा जी कोई निठल्ले बैठे नहीं कि बस तप शब्द सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे उन्होंने ऐसे नहीं किया कि अभी मैं लेट जाता हूं तो पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, कमल जैसा भेंट मिला है, कमल ही कमल था। तो लेकिन ब्रह्मा तुरंत उस पर बैठ गए, तपस्या के लिए बैठे हैं, और तपस्या में क्या है, शुद्धि है। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याजम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। जो मनीषी है, इवन जो महात्मा गण है, साधु है, मुनिगण है, उनको भी ये तीन चीजों का कदापि अपने जीवन में त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, और यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोपयम कर्म बंधना, सारे कर्म यज्ञ, भगवान का एक नाम है यज्ञ पुरुष, तो उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो हम कर्म बंधन के सारे श्रृंखला से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ व्यक्ति को करना चाहिए, दान प्रदान करना चाहिए, दान देना चाहिए, और क्या है तीसरा, तप तपस्या। ये तीनों चीजें सारे आश्रम और वर्णों के लिए है, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, इन चार इन सबके लिए है, ये चारों चीजें परम आवश्यक है। कदापि इन चीजों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि यज्ञ तान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। पावनानि मतलब पावन करते हैं। अभी कल हम नंदगांव में थे, तो वहां कौन सा सरोवर है, पावन सरोवर, पावन करती है। ये जो तीन कार्य है, और इनको हमें त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका सेवन करना चाहिए, इनमें हमें अधिक से अधिक लगना चाहिए। इसलिए हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, भगवत भक्ति हीनश्च जाति शास्त्रम जपस तपः अप्राणश्चैव देहश्च मंडनम लोकरंजनम। लेकिन ये तीनों चीजें किससे संबंधित होनी चाहिए, भगवत भजन से, भगवत भक्ति। कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, लेकिन तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या है, मैं फेमस हो जाऊं, कितना बड़ा मैं तपस्वी हूं, कितना बड़ा वैरागी हूं, एक गाजर खा के रहता हूं, मैंने चतुर्माश किया, इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाई, और फिर बहुत चीजों को अवॉइड किया, लेकिन आंतरिक रूप से क्या सोच रहा हूं, सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सब मेरी वाहवाह करें कि प्रभु जी कितने वैरागी हैं, कितने तपस्वी हैं। तो क्या वास्तव में इसके पीछे स्पिरिट क्या होना चाहिए, कृष्ण भावना, कृष्ण की प्रसन्नता। प्रभुपाद ने कहा, हमारे लिए तपस्या या हमारे लिए जो चीजें हैं वैराग्य आदि, वो क्या है, जिसमें कृष्ण गुरु और वैष्णव प्रसन्न हो, उन चीजों को हमें स्वीकार करना चाहिए, वही हमारे लिए तपस्या है। प्रभुपाद ने कहा, गुरु कहे कि जाओ किसी पैलेस में जाके रहो, वहां रहना हमारे लिए तपस्या है। आध्यात्मिक गुरु कहे जाओ पेड़ के नीचे रहो, वहां रहना हमारे के लिए तपस्या है, यह वो वैराग्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ ब्रह्मा का गुणगान श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में करते हैं, और वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है, कौन है इस आवाज के पीछे, व्यक्ति तो नजर नहीं आ रहा था, सब विशेष, विशेष मीन्स पर्सन या फॉर्म नजर नहीं आ रहा था, निर्विशेष, विशेष का मतलब है आकार, आकार, और निर्विशेष मतलब जिसका आकार नहीं है, तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने ज्यादा महत्व किस चीज को दिया, वाणी को दिया। इसलिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में अधिक से अधिक ये चर्चा की है कि एक शिष्य को अपने गुरु का जो वाणी सेवा है, उनके आदेशों को पालन करना, ये उसको आपको अपने हृदय में उसने धारण करना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करिया आख्य आरना करिया मने आशा। तो कोई व्यक्ति पूछे कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है, या फिर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का या परफेक्शन प्राप्त करने का रहस्य क्या है, तो प्रभुपद इस तात्पर्य में कहते हैं एक ही रहस्य है, आध्यात्मिक गुरु की वाणी को गंभीरता से लेना, उनकी आज्ञाओं को अपने हृदय में धारण करना और उन पर कार्यरत रहना। शिष्य का एक ही बिजनेस है, प्रभुपद यहां उस तात्पर्य में कहते हैं शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वो प्रामाणिक गुरु का आदेश माने और प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन ही सफलता का रहस्य है। इसलिए यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा करो दशते कथिता यथा प्रकाशते महात्मना। वास्तव में जिस व्यक्ति ने अपने गुरु की आज्ञाओं को उनके वाणी को गंभीरता से लिया है तो सारे शास्त्रों के जो रहस्य है वो उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं दिमाग प्रकाशित या ब्रेने प्रकाशित या मने प्रकाशित, ऐसे कहा है क्या रतन दास ठाकुर ने? नहीं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो वास्तव में गुरु की जो आज्ञा है वो शिष्य एक एक हीरे के समान अपने हृदय में रखता है। हम तिजोरी में रखते ना धन, तो उसी प्रकार से शिष्य के पास तिजोरी उसका हृदय है और उसमें रखेगा क्या क्या रखेगा? गुरु के जो आदेश है उनको रखेगा तिजोरी में, और हम जो मूल्यवान चीज है उसको हमेशा के लिए अपने पास रखते हैं और बहुत छुपा के रखते हैं और उनको उनका केयर करते हैं, उन पर कार्यरत होते हैं। तो वैसे ही है शिष्य के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद कब उनको आध्यात्मिक गुरु ने कहा था जब वो 22 साल के थे, तुम बहुत अच्छे युवक हो, अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हो, पहली बार भक्ति सिद्धांत महाराज को मिले थे उल्टा डंगा जो जंक्शन जहां गौड़िया मठ था, तो वहां जब श्रील प्रभुपाद अभय चरण उनको मिले वो क्लास में बैठने वाले थे, पहले उनकी क्लास अटेंड कर रहे थे, उसी समय से व्यास आसन पर बैठे हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने श्रील प्रभुपाद जो अपने कॉलेज डे में थे उनको देखते कहा कि तुम तो नवयुवक हो, तुम इतना अच्छा अंग्रेजी जानते हो, क्यों नहीं इस वैदिक ज्ञान का वितरण अंग्रेजी भाषा में करते। तो जैसे उनको लगा, उन्होंने कहा वास्तव में ये मेरे गुरु हैं। पहली बार जिनसे अभी वो बातचीत नहीं हुई फिर भी जो सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और प्रभुपाद ने इन आदेशों को कहां रखा? अपने हृदय में धारण किया। बल्कि और आगे चलकर जब वो गृहस्थ जीवन में थे तो राधापुर में भी जब श्रील प्रभुपाद मिले थे तभी उन्होंने कहा तुम्हारे पास जब धन आएगा ग्रंथों को छापो और ग्रंथों का वितरण करो। तो इन सब आदेशों को प्रभुपाद ने अपने हृदय में रखा था क्योंकि मूल्यवान रत्न के समान, ये रत्न कभी भी जैसे बहुत मूल्यवान रत्न है उनको हम कभी भी अपने हाथ से या कहां छोड़ नहीं सकते, सदैव हमारे पास रखना चाहते हैं। तो प्रभुपाद की आयु अभी 70 साल की हो गई फिर भी ये जो दो मूल्यवान रत्न ये दो आदेश उन्होंने अपने शिरोधार्य सर के ऊपर रखे, धारण किया इन दोनों आदेशों को, और उसकी पूर्ति के लिए प्रभुपाल ने क्या किया, हर चीज करने के लिए तैयार हो गए। एक्चुअली शिष्य वही है जो अपने आप को भूलकर गुरु की सेवा में लग जाए, गुलाम जैसे होता है हर चीज करने के लिए तत्पर। किंकर, किंकर का मतलब किं करोमि हम, किंकर कहते ना हम, किंकर मतलब सदैव हाथ जोड़कर खड़ा रहता है कि बताइए बताइए मैं क्या करूं क्या करूं आपके लिए। जैसे सनातन गोस्वामी ने कहा शिष्य को कभी गुरु के सामने बैठना नहीं चाहिए, हमेशा खड़ा होना चाहिए, उसको तत्पर होना चाहिए कि अभी क्या ऑर्डर मिलेगी मुझे और क्या मुझे करना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने शिष्यों को आज्ञा देते थे कि अभी आपको ढाका जाना है प्रचार करने, तो वो कहता था महाराज मुझे थोड़ा ना रूम में जाके लगेज लेना है। कहते पहले तुम निकलो, लगेज बाद में आएगा। पहले उसको भेज देते थे विड़ब्या का वस्त्र में, फिर बाद में उसका लगेज पहुंचाया जाता था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्टार्ट किया है। उससे पहले ये सैफरॉन वस्त्र नहीं थे, इस प्रकार का मिशनरी स्पिरिट नहीं था, उस समय संन्यास भी नहीं था। महाप्रभु ने सैफरॉन धारण किया, उसके बाद इस परंपरा में किसने सैफरॉन धारण किया था तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे। उसके बीच में किसी ने सैफरॉन वस्त्र धारण नहीं किए। गौड़िया में संन्यास का मतलब होता था सफेद लुंगी पहने, लुंगी जैसे धोती पहने और कुर्ता डाले, बस यही संन्यास है। ये सनातन गोस्वामी से शुरू हुआ था। सनातन गोस्वामी जब पहली बार उनको मिले थे चैतन्य महाप्रभु को, तो उनके तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी और बहुत मुस्लिम जैसा वेश था, तो महाप्रभु ने कहा जाओ स्नान करके आओ। तो समझ गए, स्नान करना मीन्स क्या करना, नीट एंड क्लीन। तो वो गए पूरा नीट एंड क्लीन होकर आ गए। और फिर उनके पास वस्त्र तो महाप्रभु ने तपन चंद्रशेखर आचार्य को शायद कहा या तपन मिश्र को, क्या आप इनको वस्त्र दे दीजिए। तो तपन मिश्र या चंद्रशेखर आचार्य नए वस्त्र देने लगे। सनातन गोस्वामी कहते मैं योग्य नहीं हूँ इन वस्त्रों को धारण करने के लिए, आपके जो पुराने वस्त्र है ना हाँ वो मुझे दीजिए। तो तपन मिश्र ने या चंद्रशेखर आचार्य ने पुराने वस्त्र दिए। सनातन गोस्वामी ने वो नीचे डाला, एक धोती दिया उसको फाड़ा, एक डाला नीचे और एक कंधे में डाला। तब से बाबा जी वेश शुरू हो गया। कब तक? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तक। और क्योंकि ये जो वेश है जो सनातन गोस्वामी ने धारण किया था वो ये चारों वर्ण और आश्रम से परे है। जो परमहंस धरातल पर है वही व्यक्ति शुक्र वस्त्रों को धारण करने का अधिकारी है, वही व्यक्ति बाबा श्री वेश को धारण करने का अधिकारी है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास से ऊपर की अवस्था है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि हम सनातन को स्वामी की नकल नहीं कर सकते, वो इतने उन्नत है, हम तो वर्णाश्रम में रहना चाहते हैं। वर्णाश्रम आचरवता, वर्णाश्रम को रहकर हम भगवत भजन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने संन्यास स्वीकारा और फिर सैफरॉन वस्त्र प्रदान करने लगे, गेरुआ वस्त्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इन चारों आश्रमों को उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से बनाया ताकि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो उसको बढ़ाने में तीव्रता आ जाए, तीव्रता आ जाए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञाओं को अपने हृदय में धारण करते हैं और उन पर चलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अपने मान, अपना सम्मान, अपना शरीर, अपना धन, अपना परिवार, किसी चीज को देख नहीं रहे हैं। प्रभुपाद ने पूर्ण रूपे न समर्पित हो गए केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की आज्ञाओं की पूर्ति करने के लिए। शास्त्र कहते हैं एक शिष्य को कभी भी अपने उद्धार की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं वैकुंठ जाऊंगा या गोलोक वृंदावन जाऊंगा, उसको तो केवल एक ही चिंता होनी चाहिए कैसे मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की आदेशों का पालन करूं, ये उसके लिए सबसे बड़ी वस्तु है। और यही चीज कृष्ण देने वाली है, क्योंकि हमें रोज प्रभुपाद ने दो प्रार्थना दिए हैं ये याद दिलाने के लिए। सुबह हम उठते ही गुरुवाष्टकम गाते हैं जिसमें गाते हैं यश प्रसादा भगवत प्रसाद और कृष्ण भक्ति हय जहा है थे श्री गुरु चरण पद्म, फिर याद दिलाने के लिए दिया है कि ठीक ठीक से याद करो। हाँ ये दोनों प्रेयर और इनको समझो और यही वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है, सफलता का रहस्य है कि गुरु के आदेशों को अपने हृदय में धारण करना और उनके अनुसार व्यक्ति को कार्यरत होना। और गुरु के आदेशों के अनुसार हम भगवत भजन करने का प्रयास करते हैं तो वो भगवत भजन हमें शुद्धि नहीं दे सकता। मेबी हम बहुत रेडी कर सकते हैं, बहुत बहुत हरे नाम ले सकते हैं अपने मनगढ़ंत ढंग से, गुरु शास्त्र और वैष्णव के अनुगत न होकर यदि हम भजन भगवत भजन करते हैं तो वो हमें शुद्धि नहीं दे सकता, बल्कि हमें भौतिक यश आदि दे सकता है, मान सम्मान आदि दे सकता है, लेकिन हृदय कदापि शुद्ध नहीं होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं और भगवान की कृपा से हम वंचित रहेंगे, चाहे हम बाहरी में भी हम सन्यासी क्यों ना हो, हम बाहरी लोगों की दृष्टि में बहुत उन्नत भक्त क्यों ना हो, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे हम जानते हैं, हरिवंश ब्रजवासी भक्त थे हरिवंश नाम के। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब राधा रमन की स्थापना की, राधा रमन विग्रह वृंदावन में, और सारा ब्रज उनको देखने आता था क्योंकि एक शिला से उनका प्राकट्य हुआ था राधा रमन का, जो दामोदर शिला है। तो ये हरिवंश बहुत विद्वान शिष्य थे उनके, पांडित्य उनके पास था, बहुत सारे गुण थे, लेकिन ऐसे हरिवंश की एक कमी थी। क्या कमी थी? वो हर रोज हमेशा पान चबाया करते थे, और एकादशी भी क्यों ना हो तभी भी ये जो हरिवंश है वो हमेशा पान खाते रहते थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको कहते थे कि देखो ये उचित नहीं है, तुम तो इतने स्कॉलर हो, इतने बड़े भक्त हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वह एकादशी के दिन भी भगवान को कहते ये तो राधा रानी का प्रसाद है, इसको कैसे छोड़ूंगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा प्रसाद अन्नम सदा ग्राह्यम हरेर एकादशी मिना। प्रसाद अन्न ठीक है, सदा उसको ग्रहण कर सकते हो, लेकिन हरेर एकादशी मिना, जो भगवान का विशेष दिन है एकादशी है, उस दिन को छोड़कर हमें उस अन्न को स्वीकार करना चाहिए। तो लेकिन ये गोपाल ये हरिवंश हमेशा आते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने और पान चबाते हुए आते थे। तो एक दिन एकादशी था तो उस दिन भी आ गए चबाते हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कितना बताऊं मैं तुम्हें, कई बार गुरु परेशान हो जाते हैं शिष्यों को, कलयुग में ऐसे ही है। कलयुग का वर्णन कहा गया है कि गुरुओं को जो शिष्य है वो बहुत तंग करेंगे, एक तो दुराचार सदाचार को भूल जाएंगे जो शिष्यगण है, दुराचारी आचरण करेंगे और गुरु के सर पर बैठकर उनको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, ये कलयुग का लक्षण है। तो ऐसे हरिवंश गोपाल भट्ट गोस्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा तुम बहुत उन्नत हो लेकिन तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, आज से इस अपराध के कारण मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं तुम्हारा, और यह अधिकार गुरु के पास है, शिष्य के पास ये एक प्रकार का अधिकार नहीं है गुरु को त्यागने का है, लेकिन जब गुरु का दुराचरण वगैरह देखा जाता है जब इन्होंने उनको त्यागा और फिर भी ये जो हरिवंश है इसको छोड़ नहीं रहे थे, हरिवंश को लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ अपराध कर रहा हूं। हमें लगता है ना कई बार हमें प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, हम भगवत भक्ति करते हैं दिन बीतते हैं तो हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो उचित है, ये जो अथॉरिटीज है अधिकारी है डिवोटीज है ये अनुचित है, वो मुझे एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओ, इन्होंने क्या किया अपना खुद का मंदिर बना दिया राधा वल्लभ, अभी भी है वो डिटीज, बाकी भी हरि की आगे आप जाते हैं तो राधा वल्लभ सुंदर विग्रह है, तो राधा वल्लभ की स्थापना की अलग से मंदिर वगैरह बनाकर। गोपाल भट्ट गोस्वामी को पता था, उस समय सारे गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी वगैरह। तो कालांतर में इन्होंने अपने जो दो पुत्र थे को मंदिर का सेवा कार्य भार दे दिया और फिर हरिवंश चले गए जंगल में कि जाएंगे और बस अभी भजन करते रहेंगे। लेकिन एक महान अपराध किया था, किसके प्रति? गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति। तो उस अपराध का प्रभाव जितना वैष्णव अपराध स्ट्रांग होता है उसके ही अनुपात में हमें उसके रिएक्शन झेलने पड़ते हैं। जैसे गोपाल चक्रवर्ती थे, गोपाल चक्रवर्ती है कोई जिन्होंने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, कहा था तुम्हारी नाक गल जाएगी, तो हरिदास ठाकुर तो बड़े विनम्र थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन तीसरे दिन उस खुद की जो बोल रहा था उसकी नाक गल गई और उसका आदि हो गया पूरे शरीर में। तो गोपाल भट्ट को सभी रोज यमुना में जाते थे केशी घाट में स्नान करने के लिए, क्योंकि राधारमण मंदिर नजदीक है। तो एक दिन जब ये फॉरेस्ट में भजन करने के लिए गया जंगल में, तो वहां क्योंकि हम क्या है धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो हम किसी भक्त के अंडर रहना नहीं चाहते, भक्त के अनुगत होकर भक्ति नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि स्वतंत्रता ही हमारा असली जीवन है। स्वतंत्र होकर जो भक्ति हो सकता है वो और किसी प्रकार से नहीं हो सकता, ये भावना हमें लगी रहती है। तो इनको लगा अभी तो मुझे कोई ना गुरु मेरे ऊपर ध्यान है ना कोई डिवोटी मेरे ऊपर जिनको मैं रिपोर्टिंग करूं, बताओ अपना साधना सेवा आदि का गाइडेंस लो। ये जंगल में भजन करने लगे। कुछ ही दिन बीते तो कुछ जो गुंडे हैं चोर, उन्होंने इनको पकड़ा और इनको मार डाला, मार के यमुना में फेंक दिया। इनकी गर्दन अलग हो गई सर, लेकिन एक विशेषता थी वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करने गए यमुना, दूर से देखते कि उनको राधा राधा श्री राधे का नाम सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा इतने सुबह कोई है नहीं, लेकिन दूर देखा कि ये सर एक तैरते हुए आ रहा है, यमुना में बहते हुए आ रहा है, और वो सर उनकी ओर आ रहा था गोपाल भट्ट गोस्वामी की ओर, क्योंकि वो बहुत कृतज्ञ कर रहा था। और किसलिए आ रहा था वो सर? आया बहते हुए है और गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में टच हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा आप मुझे क्षमा करो, क्योंकि ना राधा रानी क्षमा करेगी ना कृष्ण। तो वहां आचार्य कहते कि आप इतने बल्कि एक प्रकार से बहुत फेमस डिवोटी थे उस समय के, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन यश प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान के भक्तों की या गुरु की कृपा नहीं होगी तो हम अपने पास जितनी मर्जी योग्यताएं क्यों ना हो वो सारी शून्यवत है। वो सारी योग्यताएं हमें भगवान के चरणों से भक्तों के चरणों से आलेख करेगी, इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक शिष्य को गुरु के आदेशों का पालन ये उसका जीवन होना चाहिए, उसका सफलता का ये एक में रहस्य है। तो गुरु का सर्वप्रथम आदेश क्या है? कई सारे आदेश हैं, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं गुरु की प्रमुख और पहला आदेश है 16 मालाओं का जाप करना। जब हमारी दीक्षा होती है उस समय हमें पहला यही आदेश दिया जाता है कि आज से आप भगवान के नामों का जप करो, 16 मालाओं का जप करो, भक्तों का संग करो, चारणियों का पालन करो, ये सर्वप्रथम आदेश है। और बाकी आदेश क्या है? सेकंड है। लेकिन हम कई बार भावुकता से ये जो हरि नाम का उच्चारण है इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, अपने 16 मालाओं का जाप और बाकी चीजों को बहुत अधिक लगे रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम निर्बल होने लगते हैं, एकाकी आमार नहीं पाए बल। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में इस पर बहुत अधिक जोर देते थे और विशेष रूप से इस तात्पर्य में इसी चीज का प्रभुपाद ने अधिक से अधिक चर्चा किया है कि शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु का जो आदेश है उनको स्वीकारें और उनके उस आदेश को पालन करने के लिए श्रद्धा से उसको पालन करें, यही सफलता का सर्वोत्तम रहस्य है। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या कोई शॉर्टकट ढूंढो, शॉर्टकट एक ही है, अध्यात्म गुरु के आदेशों को समझना और उन आदेशों का पालन करने के लिए हम एक जो शिष्य है उसको तत्पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें जो पूर्णता है वो प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रभु ने भी वही कहा, उन्होंने कहा, उनके गुरु ने कहा, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, मूर्ख तुम्हें, तुम्हारा नहीं वेदांत। मूर्ख शब्द सोचते हैं, सुनते हमें थोड़ा और लगता है, कभी हम किसी से अपने आप को मूर्ख कोई कहे हमें तो हमें ठीक से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन महाप्रभु को आनंद आया जब उनके गुरु ने उनको डांटते हुए कहा, मूर्ख तुम्हें, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण नाम, कृष्ण मंत्र सुना, सर्व मंत्र सा, से कुछ है क्या, क्या करो, निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, यही तुम्हारे लिए उचित है। तो वहां उन्होंने कोई और चीज सोची नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने तो इसी चीज को कहा। जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए थे तो वहां सारे जो मायावादी सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती और उनकी जो पार्टी है, उनका जो टीम है, वो सब सोचते थे कि कैसा सन्यासी है जो यहाँ आया है। सन्यासी हैया करे नर्तन गायक, सन्यासी होकर नाचता है, गाता है, भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन। बल्कि उन्होंने कहा कि जो सन्यासी है उसका पहला कर्तव्य है वेदांत का पाठ करना, तहा छाड़ी करके में भाव के कर्म उसको छोड़कर भाव व्यक्ति के समान तुम नाचते रहते हो, गाते रहते हो, अपने इन कर्तव्यों का त्याग करके। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रभु कहे सुन शिवा यहाँ कारण, गुरु मुने मूर्ख देखी करिले शासन। कहे शिवा सुनो सुनो, मेरे जो गुरु है उन्होंने मुझे मूर्ख देखा है और उन्होंने कहा, मूर्ख तुम्हें तो मारना है वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तुम मूर्ख हो, तुम्हें वेदों का पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम क्या करो, कृष्ण मंत्र जप सदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु अपने आचरण से दिखाते हैं कि मैंने अपने गुरु की वाणी को कितना गंभीरता से लिया है। कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्ण रक्षरान। तो कृष्ण मंत्र या कृष्ण नाम आदि के द्वारा भगवान के चरण कमलों का जो दर्शन है वो संभव है। और मेरे गुरु ने क्या कहा, नाम बिनु कली काले नाही आय धर्म, सर्व मंत्र सार नामा यही शास्त्र मर्मा। तो महाप्रभु कहते मेरे गुरु ने कहा कलयुग में नाम के बिना कुछ और सार नहीं है। कहते फिर उन्होंने मुझे एक श्लोक सिखाया, श्लोका क्लास, कौन बैठे श्लोक सीखने के लिए, साक्षात चैतन्य महाप्रभु जिनका एक नाम है उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है। भगवान की जो स्तुति है वो चुने हुए श्लोकों के द्वारा की जाती है, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है। श्लोक शिकारी न मोरे कंठे करे यही श्लोक करे हमिचारे। तो मेरे गुरु ने मुझे केवल एक श्लोक सिखाया है और उसको मैंने अपने कंठ में धारण किया है। जैसे आप देखो एक एक श्लोक ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ चेंज कर दिया है, हजारों डिवोटीज का, जो प्राइम प्रमुख प्रमुख जो डिवोटीज हैं कई भक्तों के जीवन में। जैसे प्रभुपाद ने कहा, जैसे मेरे मुझे पता चला कि मेरा फैक्ट्री में आग लग गई, सब धन आदि ले गया, कोई चुरा लिया, मैं बिल्कुल खत्म हो गया, तो मुझे भागवत का एक श्लोक याद आया, क्या था, यशः अनुग्रहामि हरिषे तद्धनक्षणे, कहीं इस श्लोक ने मेरा जीवन बदल दिया। तो ऐसे
अब कई आचार्यों के जीवन में देखेंगे कि कोई ना कोई श्लोक आया है जिसके द्वारा एक परिवर्तन उनके जीवन में आ गया। तो महाप्रभु कहेंगे मुझे भी एक श्लोक सिखाया है मेरे गुरु जी ने और उस श्लोक को मैंने अपने कंठ में धारण किया है। और वो क्या था? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल करो नास्ते गति रहने का हरि का नाम। तो जब मैंने अपने गुरु की इस आज्ञा का पालन किया हरे नाम को लिया मैं सोचता रहा और ये जब जब करते रहा तो मैं थोड़ा सा भ्रांत मतलब मोहग्रस्त होने लगा। तो फिर मैंने देखा कि इस नाम का उच्चारण करते करते मैं कभी उन्मत्त हो रहा हूँ कभी हंस रहा हूँ कभी नाच रहा हूँ कभी गा रहा हूँ कभी पागल की तरह दौड़ रहा हूं। तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा जो ज्ञान है पहले कौन थे वो निवाय पंडित ज्ञानाचन्न हरिला अमार ये कृष्ण नाम ऐसा है कि मेरे सारे ज्ञान को इसने आच्छन्न कर दिया। और फिर पागल हैला में गरे नहीं माने ये तो चिंतित निमित्त गुरुदर्शन। फिर अपने गुरुजी के पास गया उनको कहा कि ये सब चीजें मेरे साथ हो रही है मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा केवा मंत्र दिला गोसाई केवा तारबल जपिते जपिते मंत्र करेला पागल। कौन सा मंत्र आपने दिया है जिसका जप करते करते मैं पागल हो गया हूं। और उनके गुरु ने देखा और जब गुरु ने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो चैतन्य महाप्रभु उनके जो गुरु हैं बहुत आनंदित हो गए क्योंकि गुरु तब आनंदित होते हैं वो जब देखते हैं कि शिष्य का मन उसका चित्त कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि में लगा हुआ है लग रहा है वो टेस्ट अनुभव कर रहा है ये देखकर गुरु आनंदित हो जाते हैं। कि गुरु का बिजनेस क्या है? गुरु का बिजनेस है कि कृष्ण के प्रति शिष्य के रति का उदित कराना ये उनका काम है। जैसे हम सुनते हैं कि हम सबके अंदर भोग भाव है और गुरु क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं बदलते हैं। गुरु कौन है? जो भोग की भावना जो शिष्य के अंदर भरी हुई है उसको सेवा की भावना में कन्वर्ट करने में जो एक्सपर्ट है दक्ष है वो वास्तव में गुरु है। तो जब देखा कि अरे ये तो सही हो रहा है उनके साथ फिर वहां वर्णन आता है बहुत खुश हो गए गुरु। फिर प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि कई बार डिवोटी सोचते कि बहुत सारे लाइव मेंबर बनाने से उस समय लाइव मेंबर प्रीचिंग शुरू किया था भारत में प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे तो कहते कि उससे इतना अधिक मैं प्रसन्न नहीं होगा जब जितना अधिक कोई व्यक्ति आकृष्ट होने लगता है कृष्ण में। और कृष्ण में आकृष्ट होना मतलब कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इन सब में आकृष्ट हो जाना। तो इस प्रकार से यह लक्ष्य सफलता का कि गुरु के आदेशों को हम गंभीरता से लें अपने हृदय रूपी तिजोरी में आदेश रूपी मूल्यवान रत्नों को धारण करें और हमेशा उनकी पूर्ति के लिए हम कार्यरत रहें। तो आज के श्लोक से यही है कि ब्रह्मा ने जो ये दो अक्षर सुने थे तपः उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन वाणी को उन्होंने गंभीरता से लिया और उस पर कार्य करने लगे और जिसके द्वारा ब्रह्मा जी ने इतनी कठोर तपस्या की देवताओं के 1000 साल के लिए कि सारे जीव उस तपस्या को आदर्श के रूप में देखने लगे और सारे तपस्वियों में ब्रह्मा को श्रेष्ठ तपस्वी कहा गया है। तो इसका वर्णन श्री प्रभुपाद ने आज के श्लोक में किया है। हरे कृष्ण।